पृष्ठ संख्या 96, अध्याय 4। अध्याय का शीर्षक है धर्म के आधार। इसके अंतर्गत आस्था, विश्वास, तर्क, सहज ज्ञानवाद और दैवी प्रकाशना या बेसिस ऑफ रिलीजन, इसके अंतर्गत फेथ, बिलीफ, रीजन, इंट्यूशन एंड रिवेलेशन। अब शीर्षक है पृष्ठभूमि। धर्म या धार्मिक ज्ञान की प्राप्ति के विषय में यह कहा जाता है कि आस्था, विश्वास, बुद्धि या रीजन अथवा तर्क बुद्धि तथा शास्त्र अथवा दैवी प्रकाशना प्रमुख आधार के रूप में हैं। अर्थात धार्मिक ज्ञान इन्हीं के आधार पर ही संभव है। विशेष रूप से आस्था और विश्वास ही धर्म के ऐसे आधार हैं जिनके द्वारा धार्मिक कथनों, दैवी प्रकाशनों या ईश्वर वचनों या धर्म के गूढ़तम तथ्यों को अंतरतम से ग्रहण करने वाले रहस्यवादियों अथवा धार्मिक महापुरुषों के कार्यों और वचनों को जाना जा सकता है। आस्था और विश्वास के संबंध में यहाँ तक कहा जाता है कि इनका संबंध एकमात्र धर्म से ही है। विज्ञान और धर्म के मुख्य अंतर को प्रकट करते हुए कुछ लोग यह भी कहते हैं कि विज्ञान का संबंध जहाँ बौद्धिकता से है, वहाँ धर्म का संबंध पूर्णतया आस्था और विश्वास से है। परंतु लोगों के इस कथन में अतिशयोक्ति प्रतीत होती है। वास्तव में विज्ञान और धर्म में इस प्रकार का विभेद स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रोफेसर गैलवे ने ठीक ही कहा है कि आस्था एवं प्रज्ञा या तर्क बुद्धि में इस प्रकार का कोई तीव्र विरोध नहीं है। धर्म बुद्धि विरोधी नहीं है और विज्ञान में आस्था तो निहित है ही। एक वैज्ञानिक को अपनी उस शक्ति की विश्वसनीयता में आस्था होती है जिसके द्वारा वह प्राकल्पना का निर्माण करता है और उससे निष्कर्ष प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, विज्ञान को स्वयं सिद्धियों में आस्था रहती है। इस प्रकार धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी आस्था और बौद्धिकता के आधार पर तो नहीं ही हैं। इससे हम यह भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि धर्म जहाँ आस्था मूलक होता है, वहाँ बौद्धिक भी होता है, और विज्ञान जहाँ बौद्धिक होता है, वहीं आस्था मूलक भी होता है। चूंकि मनुष्य बौद्धिक प्राणी है, अतः उसकी प्रत्येक क्रिया में बौद्धिकता का अस्पष्टतः स्थान रहता है। धर्म और धार्मिक चेतना में ज्ञान भावना क्रिया का समान रूप से स्थान स्वीकार किया जाना चाहिए। फिर भी धर्म को आस्था मूलक या भावना परक ही कहा जाता है। आस्था से ही धार्मिक व्यक्ति अपने श्रद्धेय को ग्रहण करता है। धार्मिक विषय का उद्भव बुद्धि से नहीं, भावना से ही संभव है। आस्था और विश्वास ही इसके मूल स्रोत हैं। हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि धर्म के क्षेत्र में बुद्धि का कोई स्थान नहीं है। बुद्धि और तर्क से ही धर्म के विषयों को बोधगम्य बनाया जा सकता है। बुद्ध का काम मार्गदर्शन करना है। पृष्ठ संख्या 97। धर्म संबंधी ज्ञान के लिए बुद्ध को आधार बनाया जा सकता है। बुद्ध या तर्क द्वारा धर्म का विज्ञान संभव बनाया जा सकता है। धर्म में तर्क का स्थान और उसकी आवश्यकता का निरूपण करने के लिए हम इस विवाद का हल ढूंढने का प्रयास करेंगे कि क्या धर्म का विज्ञान संभव है, अर्थात धर्म के आधार के रूप में क्या तर्क बुद्धि को स्थान दिया जा सकता है, या तर्क की धर्म के लिए क्या आवश्यकता है। हम इस विवाद के हल से यह भी देखेंगे कि धर्म के आधार के रूप में आस्था और विश्वास का स्थान तो है ही, रीजन या तर्क बुद्धि का महत्व कम नहीं है। अगला शीर्षक है सापेक्षवाद और रीजन या तर्क बुद्धि। धर्म को विज्ञान सम्मत बनाने के विरोध में सापेक्षवादी, सहज ज्ञानवादी तथा दैवी प्रकाशना के पक्षपाती कुछ ऐसा तर्क देते हैं कि जिससे पता चलता है कि धर्म का विज्ञान के रूप में अध्ययन नहीं किया जा सकता। सर्वप्रथम सापेक्षवादी यह कहते हैं कि बुद्धि या तर्क द्वारा निरपेक्ष ज्ञान संभव नहीं है, क्योंकि जब हम बुद्धि के द्वारा निरपेक्ष का या धर्म के तात्विक विषय का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं तो वह धर्म का विषय निरपेक्ष तत्व हमारी बुद्धि और विचारों द्वारा सापेक्ष हो जाता है। इस प्रकार निरपेक्ष ज्ञान बुद्धि और तर्कों विचारों द्वारा प्राप्त करना असंभव है। सापेक्षवादी दूसरा तर्क प्रस्तुत करते हैं कि बुद्धि जब निरपेक्ष की खोज में तत्पर होती है तो विरोधी विचारधाराओं को जन्म देती है, अर्थात इससे ईश्वर है और ईश्वर नहीं है दोनों ही प्रकार की परिकल्पनाएं सिद्ध हो जाती हैं। इनका तीसरा तर्क बुद्ध की प्रामाणिकता के विषय में है। इसके अनुसार बुद्ध द्वारा की गई परिकल्पना पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। जब तक कि बुद्ध की प्रामाणिकता नहीं सिद्ध हो जाती, यह भी कि बुद्ध की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए बुद्ध के अतिरिक्त दूसरा कोई साधन नहीं है जिससे कि उसकी प्रामाणिकता सिद्ध की जा सके। इस प्रकार बुद्ध जनित ज्ञान की प्रामाणिकता पर विश्वास नहीं किया जा सकता। चौथा तर्क यह है कि तर्क या विचार करने का अर्थ है किसी वस्तु को बुद्धि और विचारों द्वारा सीमित करना। इस प्रकार असीमित, निरपेक्ष और अज्ञेय को बुद्धि और तर्क द्वारा जानने का प्रयास व्यर्थ है। अज्ञेय को जानने का प्रयास स्वयं में विरोधपूर्ण है। इन तर्कों के साथ ही साथ सापेक्षवादी यह भी तर्क देते हैं कि यद्यपि निरपेक्ष बुद्धि और तर्क द्वारा अज्ञेय है, किंतु उसका अस्तित्व असिद्ध नहीं किया जा सकता। हमारे सापेक्ष विचार बिना निरपेक्ष की सत्ता के टिक नहीं सकते। इस प्रकार सापेक्षवादी एक ओर तो यह कहते हैं कि बुद्धि और तर्क द्वारा निरपेक्ष का ज्ञान संभव नहीं है, और दूसरी ओर वह यह भी कहते हैं कि निरपेक्ष के अस्तित्व से इनकार भी नहीं किया जा सकता। अब अगला शीर्षक है समीक्षा। सापेक्षवादियों के उपर्युक्त तर्कों की समीक्षा से यह सिद्ध किया जा सकता है कि धर्म के क्षेत्र में तर्क बुद्धि या रीजन का क्या महत्व है। इसमें पहला बिंदु है, सापेक्षवादी यह कहते हैं कि ईश्वर या निरपेक्ष का ज्ञान तर्क बुद्धि और इंद्रियों द्वारा असंभव है, और साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व की हमें जो चेतना होती है उससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। सापेक्षवादियों के इन दोनों कथनों में समन्वय असंभव है। या तो निरपेक्ष का अस्तित्व ही नहीं है या उसका अस्तित्व है। यदि अस्तित्व है तो हम यह नहीं कह सकते कि वह अज्ञेय या अविचारणीय है। जिस वस्तु के विषय में हमारी बुद्धि और इंद्रियों की पहुंच नहीं है उसे हम निरपेक्ष भी नहीं कह सकते। यदि निरपेक्ष की चेतना है तो वह तर्क या बुद्धि से निरूपित किया जा सकता है। बिंदु दूसरा है, प्रत्येक ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय की सत्ता सिद्ध करता है। यदि हमें ईश्वर के अस्तित्व का ज्ञान है तो वह हमारे लिए ज्ञेय है और हम उसे ज्ञेय के ज्ञान के ज्ञाता हैं। वस्तु ज्ञान स्वयं ज्ञाता की सत्ता सिद्ध करता है। इससे भी सिद्ध होता है कि निरपेक्ष हमारी बुद्धि और विचार से परे नहीं है, और धर्म के इस परम विषय के ज्ञान में तर्क बुद्धि और विचार का महत्व है। पृष्ठ संख्या 98। बिंदु तीसरा, कहा जाता है कि असीम और निरपेक्ष तक हमारे विचारों की पहुंच नहीं है। किसी वस्तु को विचारों द्वारा जानने का यही तरीका है कि हम उस वस्तु का दूसरी वस्तुओं से संबंध और भेद जानते हैं, किंतु वह असीम तथा निरपेक्ष संबंधों से रहित और भेद रहित है, और उसे सीमित संबंधों और भेदों से जानना असंभव है। परंतु जहाँ निरपेक्ष का ज्ञान तर्क बुद्धि और इंद्रियों द्वारा असंभव है, वहीं उसके अस्तित्व की चेतना से इनकार नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, जब हम अपने सापेक्ष ज्ञान पर विचार करते हैं और सापेक्ष नाम देते हैं तो अवश्य ही हमें निरपेक्ष का भी कुछ भान रहता है, अन्यथा हम अपने इस ज्ञान को सापेक्ष और निरपेक्ष नाम कैसे देते। सापेक्ष का आधार निरपेक्ष ही तो होता है। इससे सिद्ध होता है कि निरपेक्ष और असीमित का पूर्णतः नहीं तो कुछ अंशों में अवश्य ज्ञान रहता है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि निरपेक्ष के ज्ञान में बुद्धि या रीजन तथा विचार का महत्व है। चौथा है, किसी वस्तु के ज्ञान से उस वस्तु के अस्तित्व को अलग नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, अस्तित्व की ज्ञेयता और विचार को तत्व से अलग करने पर हम उस तत्व की सिद्धि नहीं कर सकते। केयर्ड ने ठीक ही तर्क दिया है कि हम वृत्त के केंद्र का उसकी परिधि से भेद कर सकते हैं, किसी छड़ी के दोनों छोरों में भेद कर सकते हैं, लेकिन हम वृत्त के केंद्र का बिना परिधि के तथा छड़ी से अलग उसके दोनों छोरों के अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते। यह इसलिए नहीं कि हमारी बुद्धि सीमित है या उन तथ्यों को समझने में असमर्थ है, बल्कि इसलिए कि वृत्त के केंद्र का परिधि से पृथक रूप में या छड़ी के दोनों छोरों का छड़ी से पृथक रूप में समझना संभव नहीं है। इसी तरह हम बुद्धि से निरपेक्ष का ज्ञान किसी संबंध से ही प्राप्त करते हैं। बिंदु पांचवा है, हमारे लिए उस वस्तु का अस्तित्व सिद्ध नहीं किया जा सकता जो विचारों से परे है। विचार की सत्ता तो सभी वस्तुओं में है, प्रकृति, मानव इत्यादि सब में। यह विचार हमारे द्वारा उत्पन्न नहीं किया जाता, वरन हमारी बुद्धि इन विचारों का प्रकृति में अन्वेषण करती है। प्रकृति में जो विचार सन्निहित है वह हमसे स्वतंत्र तो अवश्य है, परंतु हमारी बुद्धि के क्षेत्र से बाहर नहीं है। बुद्धि इन बौद्धिक तत्वों का अन्वेषण करने में समर्थ है, जो निरपेक्ष मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। वह उसके विचारों से कैसे अलग किया जा सकता है? मानव विचार से परे रहकर कैसे उसका चरम लक्ष्य हो सकता है? यदि निरपेक्ष मानव बुद्धि के सर्वथा परे है, तो यह कहना कि मनुष्य जीवन का उच्चतम लक्ष्य मोक्ष या आत्म साक्षात्कार है सिद्ध नहीं होता। यदि निरपेक्ष के अज्ञेय कहेंगे तो अज्ञेय की उपासना तथा उसके प्रति भक्ति, भय, आदर आदि की भावनाएं उत्पन्न होना असंभव है। मनुष्य एक विचारशील प्राणी है, विचार ही उसकी विशेषता है। इसलिए विचार से परे किसी वस्तु के प्रति इन भावनाओं का मनुष्य में पैदा होना असंभव सा दिखाई पड़ता है। बिंदु छठवां है, सापेक्षवादी यह समझते हैं कि विचार या तर्क बुद्धि द्वारा असीमित और निरपेक्ष को जानने का प्रयत्न करना उसे सीमित और सापेक्ष बना देना है। विचार निरपेक्ष से बाहर है, परंतु यह उनकी भूल है। हमारा विचार उसी परमात्मा जो असीम और निरपेक्ष है का प्रकाश है। यह उससे कोई बाह्य पदार्थ नहीं है जिससे हम उसे जानने का प्रयास करते हैं। सापेक्षवादियों के विरोध में यह भी कहा जा सकता है कि जब हम अपने व्यक्तिगत राग द्वेष आदि से ऊपर उठकर उस निरपेक्ष सत्ता के विषय में विचार तर्क करते हैं, तब हम अपने व्यक्तित्व के ऊपर उठकर उस निरपेक्ष के क्षेत्र में पर्दापण करते हैं और उस असीम तथा निरपेक्ष से संबंध स्थापित करते हैं। पृष्ठ संख्या 99। यहाँ पर हमें सत्य का दर्शन होता है। इस तरह हमारा यह सत्य निरपेक्ष द्वारा ही अपने को प्रकाशित करता है। मनुष्य जब अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, लोभ और मोह आदि से ऊपर उठ जाता है, तो उसकी बुद्धि और विचारों का रीजन से जो अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त है सीधा संबंध स्थापित हो जाता है और वह अपने सीमित दायरे से असीमित क्षेत्र में प्रवेश करके सत्य की खोज करता है। अतः हम कह सकते हैं कि सत्य की खोज उसी असीमित का सीमित में अपने आप का प्रकाशन है। अगला शीर्षक है सहज ज्ञानवाद और तर्क बुद्धि या इंट्यूशनिज्म एंड रीजन। सहज ज्ञानवादी भी सापेक्षवादियों की भांति रीजन या तर्क बुद्धि को धार्मिक ज्ञान के क्षेत्र में स्थान नहीं देते। इन लोगों के अनुसार अंतःकरण द्वारा हम उस परम ब्रह्म का अपरोक्ष या सहज ज्ञान प्राप्त करते हैं। इनके अनुसार धार्मिक ज्ञान की प्राप्ति में हमारी तर्क बुद्धि असमर्थ है। इनका आक्षेप है कि हम बुद्धि और तर्क द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वह संकुचित और अनिश्चित होता है। बुद्धि और तर्क तो केवल द्वैत को जन्म देते हैं। यदि हम बुद्धि और तर्क द्वारा उस निरपेक्ष को जानने का प्रयत्न करते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि हम उस पर कोई चीज बाहर से थोपते हैं। इस प्रकार उसकी निरपेक्षता नष्ट हो जाती है। वह अपने से भिन्न विचार द्वारा जाने जाने के कारण सीमित हो जाता है। यदि वह हमारे विचारों की श्रृंखला में आ जाता है तो निरपेक्ष नहीं कहा जा सकता। उसका महत्व नष्ट हो जाता है और वह सापेक्ष हो जाता है। तर्क या रीजन तो हमें उस दैवी शक्ति के संपर्क से दूर ले जाता है और वह केवल विवाद को ही जन्म देता है। इसके विपरीत हमारा अंतःकरण या इंट्यूशन अपने सहज ज्ञान द्वारा हमें उस शक्ति के निकट पहुंचाता है जिसका हृदय शुद्ध है। वह उस परम तत्व को जान सकता है, परंतु जिसका हृदय पवित्र नहीं है वह कितना ही कुशाग्र बुद्धि का क्यों न हो उसे नहीं जान सकता। अगला शीर्षक है समीक्षा। यदि सहज ज्ञानवाद की समीक्षा की जाए तो इसके तर्कों के सत्यासत्य पर प्रकाश पड़ सकता है। समीक्षा से रीजन या तर्क बुद्धि का धर्म के क्षेत्र में स्थान भी निर्धारित किया जा सकता है। इसमें पहला बिंदु है, यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो निरपेक्ष को बुद्धि द्वारा जानने का अर्थ यह नहीं होता कि हम विचार या तर्क बुद्धि को निरपेक्ष से बड़ा बना देते हैं या निरपेक्ष तत्व विचार श्रृंखला में आने के कारण सीमित हो जाता है। विचार तो उसी महत्तत्व का प्रकाशन है और यदि उसी के प्रकाश से हम उसे जानने का प्रयास करते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि हम कोई चीज उस पर बाहर से थोप रहे हैं। अथवा विचार श्रृंखला में आने के कारण वह अपने से भिन्न किसी दूसरी वस्तु द्वारा जाना जा रहा है और इस तरह वह सीमित हो रहा है। दूसरा है सहज ज्ञानवाद के विरोध में दूसरा तर्क यह दिया जा सकता है कि तर्क और विश्वास दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं किए जा सकते। दर्शन शास्त्र और धर्म दोनों तर्क पर आधारित हैं। धर्म से तर्क को अलग करना बुद्धिमत्ता नहीं है। तीसरा है, दर्शन शास्त्र धर्म की पूर्व कल्पना करता है। दोनों ईश्वर सत्ता को पूर्व कल्पित करते हैं। धर्म में तर्क अथवा विचार का तत्व निहित रहता है। यदि धर्म में विचार तत्व न रहे तो दर्शन शास्त्र धर्म की पूर्व कल्पना कैसे करता? केवल धर्म में ही नहीं, वरन मनुष्य के सभी कार्य क्षेत्रों जैसे नीतिशास्त्र, कला, सामाजिक एवं राजनीतिक संबंधों, राष्ट्रों और विश्व के इतिहास आदि में बुद्धि अथवा विचार का तत्व निहित रहता है। यही मनुष्य जीवन की विशेषता है। पृष्ठ संख्या 100, बिंदु चौथा है, धार्मिक अनुभव हमें सीमित से ऊपर उठाकर असीमित के प्रति श्रद्धा, भक्ति, आदर के क्षेत्र तक पहुँचाते हैं। इस प्रकार हम उस निरपेक्ष से संबंध स्थापित करते हैं। सत्य है कि हम उस निरपेक्ष की सीमा में प्रवेश करने के पहले तर्क द्वारा उसे जानने की चेष्टा नहीं करते। हम विश्वास, श्रद्धा और भक्ति के द्वारा ही उससे संबंध स्थापित करने में समर्थ होते हैं। ऐसी स्थिति में आत्मा निरपेक्ष से सानिध्य प्राप्त करके अच्छे आनंद का अनुभव करती है। ऐसी स्थिति में जबकि भक्त प्रेम से विभोर होकर अनादि शक्ति के समक्ष नतमस्तक होता है, तो यह संभव नहीं होता कि भक्त उसी क्षण तर्क द्वारा उसके अस्तित्व के बारे में सोचता रहा हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुभव जन्य ज्ञान तो हमें सहज ज्ञान द्वारा प्राप्त होता है, तर्क जन्य ज्ञान इसकी अपेक्षा निम्न और कम आकर्षक होता है। परंतु यह बात हमारे सभी प्रकार के ज्ञान के लिए लागू हो सकती है। हमारे सहज ज्ञान और विचार तथा तर्क द्वारा प्राप्त ज्ञान, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। इन सभी प्रकार के ज्ञानों में बुद्धि का तत्व विद्यमान रहता है। पांचवा है, रीजन या तर्क से प्राप्त ज्ञान के विषय में यह आक्षेप किया जाता है कि सहज या अपरोक्ष ज्ञान जो अंतःकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है वह तार्किक या वैज्ञानिक ज्ञान से अधिक विस्तृत और सजीव होता है। तार्किक ज्ञान तो विश्लेषण, वर्गीकरण के तरीकों का उपयोग करके पूर्ण वस्तु के ज्ञान को जो सहज ज्ञान द्वारा प्राप्त होता है विकृत कर देता है, उसकी सजीवता भी नष्ट कर देता है। परंतु यह आक्षेप निराधार है। सच तो यह है कि तार्किक या वैज्ञानिक ज्ञान हमारे साधारण अनुभव जन्य ज्ञान को अलग अलग तत्वों के रूप में और उनके परस्पर के संबंधों के रूप में अध्ययन करके हमें उसका पूर्ण ज्ञान देता है और उसके उपयोग के बारे में हमारी जानकारी भी बढ़ाता है। यह तो सही है कि अनुभव जन्य ज्ञान में जो सजीवता रहती है वह बुद्धि और तर्क द्वारा वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान में नहीं रहती, परंतु थोड़ा सा भान हमें उस वस्तु के वास्तविक स्वरूप का होता है। बुद्धि विभिन्नता में एकता भिन्न भिन्न तत्वों के समन्वय में निहित संबंधों तथा वस्तु के पूर्ण स्वरूप के विकास में निहित सिद्धांतों की जानकारी कराकर हमारे वस्तु संबंधी ज्ञान को पूर्ण बनाती है। छठवां है सहज ज्ञानवादियों का यह कहना कि निरपेक्ष की सत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता। यह सिद्ध करता है कि उस निरपेक्ष का हमें ज्ञान हो रहा है और उस निरपेक्ष से हमारा यह ज्ञान संबंध स्थापित करा रहा है। यदि हम यह मानते हैं कि वह असीमित हमारी सीमित आत्मा से बिल्कुल भिन्न है तो वह संबंध कैसे स्थापित होगा? इसके लिए यदि तीसरी शक्ति को और फिर चौथी शक्ति को माने कि वही संबंध स्थापित करता है तो तार्किक रूप में अनावस्था दोष उत्पन्न हो जाएगा। यदि यह मान लें कि ऐसा कोई संबंध सीमित और असीमित के बीच नहीं हो सकता तो वह असंभव सा प्रतीत होता है, क्योंकि बिना ज्ञाता गे के चेतन संबंध के हमारा यह ज्ञान आया कहाँ से? यह सर्वविदित है कि किसी प्रकार का ज्ञान, चाहे वह परोक्ष हो या अपरोक्ष, उसमें ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय में चेतन संबंध स्थापित रहता है। यदि संबंध न हो, अर्थात हमें इसकी चेतना न हो कि हम अमुक वस्तु को जान रहे हैं, तो हमारा ज्ञान ज्ञान कहलाने का अधिकारी नहीं है। सातवां है सहज ज्ञानवादी अंतःकरण अथवा प्रज्ञा या इंट्यूशन से प्राप्त ज्ञान को निश्चित और असंदिग्ध मानते हैं। पृष्ठ संख्या 101। यदि इस तथ्य पर विचार किया जाए तो हम कह सकते हैं कि सहज या अपरोक्ष ज्ञान चाहे लौकिक वस्तुओं का हो चाहे अलौकिक, अपनी निश्चितता और असंदिग्धता के लिए बुद्धि पर ही तो निर्भर है। हमारी बुद्धि ही बतलाती है कि अमुक प्रकार का ज्ञान निश्चित है या अनिश्चित, संदिग्ध है या असंदिग्ध। अतः यह कहा जा सकता है कि निश्चितता और असंदिग्धता का तत्व बुद्धि से कोई बाहर की चीज नहीं है, इसका स्रोत बुद्धि ही है। इसीलिए यह नहीं कहा जा सकता कि बौद्धिक या तार्किक ज्ञान उतना निश्चित अथवा असंदिग्ध नहीं होता जितना अपरोक्ष सहज ज्ञान होता है। बिंदु आठवां है सहज ज्ञानवादी तर्क बुद्धि या रीजन को इसलिए अपने ज्ञान के लिए महत्व नहीं देते कि उनका ज्ञान कहीं बाहर से नहीं प्राप्त होता जिसे सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता हो। यह ज्ञान अनडिराइव्ड होता है, यह अपना प्रमाण स्वतः है, तर्क उसे सिद्ध करने में असमर्थ है। उनका यह भी कहना है कि यदि ज्ञान को विश्वजनीन संदेहवाद के गर्त में नहीं गिराना है तो इस तथ्य की सत्यता को स्वीकार करना पड़ेगा, परंतु उपर्युक्त तर्क के विरोध में इतना कहना पर्याप्त होगा कि सहज ज्ञानवादियों के पास इसका कोई प्रमाण नहीं है कि हमारा अपरोक्ष सहज ज्ञान जो अंतःकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है वह तर्क और बुद्धि से परे अनडिराइव्ड ज्ञान ही है। मान लीजिए इस ज्ञान तक हमारी पहुंच हो भी जाती है और उनसे जो संतुष्टि प्राप्त होती है तो क्या उसे हम यह मान लेंगे कि वह हमारे व्यवहारिक क्षेत्र से बाहर की चीज है? उत्तर होगा नहीं। बहुधा हम लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं कि हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा अमुक कार्य हो जाएगा। यदि हम इस तरह के व्यक्त किए गए विश्वास की निश्चितता को इसलिए मान ले कि यह सहज ज्ञान द्वारा प्राप्त है और अनडिराइव्ड ज्ञान दे रहा है तथा यह ज्ञान तर्क के क्षेत्र से बाहर है, तो हमारा ज्ञान व्यक्तिगत वस्तु का रूप ले लेगा, अर्थात आत्मगत या सब्जेक्टिव हो जाएगा और उससे विश्वजनीनता या यूनिवर्सलिटी का तत्व नष्ट हो जाएगा। फिर तो उसे लोग तर्क बुद्धि द्वारा प्रमाणित नहीं कर सकेंगे। ऐसी दशा में सभी अपने अपने ज्ञान को अनडिराइव्ड कहकर उसे सत्य प्रमाणित करने लगेंगे और इस तरह का ज्ञान एक दूसरे के ज्ञान से भिन्न होने लगेगा तथा ज्ञान के क्षेत्र में बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। बिंदु नौवां है, हमारा विश्वास बुद्धि अथवा तर्क से परे कोई वस्तु नहीं है। ये विश्वास हमारे अव्यक्त विचारों द्वारा ही निर्मित होते हैं। हमें इसकी चेतना नहीं रहती कि ये विश्वास कैसे निर्मित हुए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्वास जो सहज ज्ञानवादियों के ज्ञान की निश्चितता के प्रमाण हैं, बुद्धि और विचार से परे की कोई वस्तु नहीं है।